नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य में जमीन सर्वे का कार्य जुलाई 2026 तक होगा पूरा। शहरी क्षेत्रों में भी की जाएगी सर्वेक्षण की शुरुआत। बिहार विधान परिषद के विधानसभा कोटे की एक रिक्त सीट के लिए उपचुनाव 23 जनवरी को होगा। सीबीडीटी ने विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा 31 जनवरी 2025 तक बढ़ाई। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर भागों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी का पूर्वानुमान व्यक्त किया। अब समाचार विस्तार से। राज्य में जमीन सर्वे की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बताया कि भूमि सर्वेक्षण का कार्य करने के लिए जुलाई 2026 तक समय सीमा निर्धारित की गई है।
एक साल की प्रक्रिया थी, उसको हम लोगों ने थोड़ा सा डिले किया है, क्योंकि जैसे ही वो अगस्त महीने में शुरू हुआ था, हम लोगों ने जब नोटिफिकेशन और सारा जगह शुरू किया, बहुत ज्यादा पैनिक हो गया था लोगों में, जिसमें कार्यालयों पर इतनी लंबी लंबी लाइनें लगने लगी थी, इतनी भीड़ होने लगी थी। उसको देखते हुए हम लोगों ने इसीलिए अमेंडमेंट करके जो सेल्फ डिक्लेरेशन वाला टाइम है उसको हम लोगों ने बढ़ाया है। तो इसलिए केवल ये लोगों की सुविधा का जुलाई 26 को हम लोग डेडलाइन मान के चलेंगे।
श्री सिंह ने कहा कि भूमि सर्वेक्षण का काम बिना किसी विवाद के पूरा कराने के लिए समय सीमा का विस्तार किया गया है।
हम लोग चाहते हैं कि काम में भले ही थोड़ा विलंब हो, लेकिन ऐसा काम हो कि जिसमें विवाद जो है वो निष्पादन हो, न कि उसकी वजह से विवाद और बढ़ जाए।
श्री सिंह ने कहा कि ग्रामीण के साथ ही शहरी क्षेत्रों का भी भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके तहत पहले चरण में 2 लाख से कम आबादी वाले शहरों का सर्वेक्षण होगा। इसकी शुरुआत सोनपुर, तारापुर, बक्सर, बांका, राजगीर और डेहरी से होगी। बिहार विधान परिषद के विधानसभा कोटे की एक रिक्त सीट के लिए उपचुनाव 23 जनवरी को होगा। चुनाव आयोग के अनुसार उपचुनाव के लिए अधिसूचना 8 जनवरी को जारी की जाएगी। नामांकन पत्र 13 जनवरी तक दाखिल किए जा सकते हैं। 14 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी तथा 16 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर मतदान 23 जनवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। उसी दिन मतों की गिनती होगी। गौरतलब है कि विधानसभा कोटे की यह सीट राजद के सुनील कुमार सिंह की सदस्यता समाप्त होने के बाद 27 जुलाई से खाली है। बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य आजाद गांधी ने राजद की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद को भेजे इस्तीफे में कहा है कि पार्टी में पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिल रहा है। उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि व्यस्त रेलवे क्रॉसिंग फाटकों पर रेलवे ओवरब्रिज आरओबी बनाया जाएगा। उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात के दौरान प्रदेश में रेलवे योजनाओं के बारे में बातचीत की और ज्ञापन भी सौंपा। मुलाकात के बाद श्री सिंह ने कहा कि पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व वाली सड़कों पर रेलवे क्रॉसिंग के बदले आरओबी बनाए जाने की मांग रेल मंत्री से की है। रेल मंत्री ने अधिक से अधिक आरओबी निर्माण का आश्वासन दिया है। श्री सिन्हा ने कहा कि आरओबी के निर्माण से दुर्घटनाओं में कमी आएगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 कर दी है। इससे करदाताओं को योजना में तय देय राशि निर्धारित करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य करदाताओं को आयकर विभाग के साथ विवादों को सुलझाने में मदद करना है। यह योजना करदाताओं को एक तय प्रतिशत के साथ विवादित राशि का भुगतान करके अपनी बकाया कर देनदारियों का निपटाना करने में मददगार है। प्रदेश में साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए आर्थिक अपराध इकाई ईओयू में एक विशेष कोषांग का गठन किया जाएगा। एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने पत्रकारों को बताया कि इस कोषांग में आईजी, डीआईजी, एसपी और डीएसपी के साथ इंस्पेक्टर, दरोगा और पुलिस की तैनाती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि साइबर अनुसंधान के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला का गठन किया गया है ताकि मामलों की जांच में तेजी आ सके। श्री कृष्णन ने कहा कि प्रदेश में साइबर कमांडो भी बनाया जाएगा। इसमें आईटी और तकनीकी क्षेत्र की डिग्री वाले 176 अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। वहीं ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने कहा कि पटना में साइबर अपराध की बढ़ती घटना को देखते हुए जिले में 4 नए साइबर थाने खोले जाएंगे। केंद्र सरकार ने मीडिया में आ रही उन खबरों को खारिज कर दिया है कि डीजी यात्रा का उपयोग कर चोरों को पकड़ने के लिए किया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि डीजी यात्रा से संबंधित ऐसी रिपोर्ट निराधार और गलत दावों पर आधारित है। मंत्रालय ने कहा कि डीजी यात्रा पर मौजूद यात्रियों का आंकड़ा भारतीय कर अधिकारियों के साथ साझा नहीं किया जाता है। यह ऐप केवल घरेलू यात्रियों के लिए है, इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नहीं किया जाता है। इस बीच आयकर विभाग ने भी स्पष्ट किया कि अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। डीजी यात्रा चेहरे की पहचान की प्रौद्योगिकी है जिसका उपयोग विभिन्न हवाई अड्डों पर यात्रियों के संपर्क रहित और निर्बाध आवागमन के लिए किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने आरटीजीएस और एनईएफटी के माध्यम से पैसे के लेनदेन को सुरक्षित बनाने के लिए 1 अप्रैल से ग्राहकों को नई सुविधा देने की कवायद शुरू की है। इसके तहत पैसे भेजने वाले को प्राप्तकर्ता का खाता संख्या डालने के साथ ही उसका नाम देखने की सुविधा मिल सकेगी। आरबीआई ने इस संबंध में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई से नई सुविधा विकसित करने को कहा है। यह सुविधा ग्राहकों को बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। बीपीएससी मामले में आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों ने मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा से मुलाकात की। अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों को रखा। मुलाकात के दौरान गतिरोध दूर करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं हो सका। प्रदर्शन कर रहे परीक्षार्थियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है। इधर विरोध प्रदर्शन के बीच मुख्य सचिव और बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार ने राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराया। सर्द पछुआ हवा के कारण प्रदेश के अधिकांश भागों में ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राजधानी पटना समेत राज्य के कई जिलों के अधिकतम तापमान में कमी आई है, हालांकि न्यूनतम तापमान में कमी नहीं दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर भागों में न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि 9 वर्ष में तापमान में कमी का सिलसिला जारी रहेगा।
साल का आखिरी दिन की सुबह और रात के साथ साथ 2025 का पहला जनवरी में अच्छी खासी सर्दी देखने को मिलेगा। मौसम शुष्क, सुबह के समय कोहरा, लेकिन जैसे ही हवा की रफ्तार पकड़ेगी कोहरा साफ हो जाएगा। दिन में धूप खिलेगी, बीच बीच में आंशिक रूप से बादल आते जाते रहेंगे। इसके बावजूद भी उत्तरी पश्चिमी हवा चलने के कारण दिन में भी ठंड बनी रहेगी।
प्रदेश में वर्ष 2024 की विदाई और 2025 के स्वागत के लिए व्यापक तैयारी की जा रही है। नए साल के स्वागत और जश्न को लेकर लोगों में उत्साह है। इसके मद्देनजर प्रशासन ने भी सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। प्रदेश भर में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस मुख्यालय ने कई निर्देश जारी किए हैं। अपर पुलिस महानिदेशक पंकज कुमार दराद ने कहा है कि प्रदेश के सभी प्रमुख जगहों और पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी।
सभी जिला मुख्यालय से आदेश दिया गया है कि विजिबल डिप्लॉयमेंट रखेंगे, हर एक जगह फोर्स दिखे पब्लिक को, उससे पब्लिक में सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस बनता है। और जो क्षेत्र है जिन जिलों में जहां पिकनिक आदि के लिए लोग जाते हैं वहां पर विशेष डिप्लॉयमेंट रखेंगे देर तक। इस दौरान संध्या और सुबह में फ्रिस्किंग चेकिंग जो होता है, एंटी क्राइम चेकिंग, उसको हम लोग चलाएंगे। निसंदेह थोड़ा तकलीफ जनता को होगा, मगर ये जनता के सुरक्षा और उनके हित में ही किया जा रहा है। जनता से अपील करेंगे कि सहयोग करें, नए साल को सेलिब्रेट करना चाहते हैं अच्छे से करें।
इधर राजधानी पटना में भी नए साल के स्वागत को लेकर उत्साह का माहौल है। सभी प्रमुख कार्यालयों को रंग बिरंगे बिजली के झालरों से सजाया गया है। होटलों में भी नए साल के स्वागत के लिए विशेष आयोजन के प्रबंध किए गए हैं। तारामंडल, चिड़ियाघर, बिहार संग्रहालय और श्रीकृष्ण विज्ञान केंद्र में लोगों की सुविधा के लिए काउंटरों की संख्या बढ़ा दी गई है। वहीं जश्न को शांतिपूर्ण मनाने के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पटना के संजय गांधी उद्यान और बिहार संग्रहालय में 100 जवानों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। चिड़ियाघर में वोटिंग पर रोक लगा दी गई है। गंगा नदी में आज और कल नावों के परिचालन पर रोक रहेगी। शराब पीने वालों की धरपकड़ के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। महाकुंभ मेला 2025 के दौरान रेलवे ने यात्रा से 15 दिन पहले अनारक्षित टिकट जारी करने की सुविधा शुरू कर दी है। अब तक अनारक्षित टिकट 3 दिन पहले तक ही लिए जा सकते थे। वहीं टिकट रद्द कराने की समय सीमा को भी 3 घंटे से बढ़ाकर 6 घंटे कर दिया गया है। इधर यात्रियों की सुविधा के लिए महाकुंभ के दौरान 3000 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी, जिनमें 560 रेलगाड़ियां प्रयागराज में बनाए गए रिंग रेल मार्ग पर चलेगी। महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होगा। दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 358वें प्रकाश पर्व का आयोजन 4 से 6 जनवरी के बीच पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरमंदिर साहिब में किया जाएगा। इसको लेकर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने व्यापक तैयारी की है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए राजधानी पटना में 12 स्थानों पर व्यवस्था की गई है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर हेल्प डेस्क बनाया जा रहा है, जहां श्रद्धालुओं को विभिन्न जानकारी दी जाएगी। इधर प्रकाश पर्व पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए 100 से अधिक मजिस्ट्रेट और 2000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। समस्तीपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र के मगरदही घाट चौक पर कल रात कबाड़ी दुकान समेत आधा दर्जन दुकानों में भीषण आग लग गई। घटना में लाखों रुपए मूल्य का सामान जलकर नष्ट हो गया। स्थानीय विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने जिला प्रशासन से समस्तीपुर शहर के कबाड़ी दुकानों वाले सभी संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर सुरक्षा के उपाय करने की मांग की है। खगड़िया जिले की चौथम थाना पुलिस ने सरैया गांव में एक दुकान से 44 किलोग्राम गांजा, करीब 2 लीटर प्रतिबंधित सिरप के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है। दुकान से एक पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस, एक मैगजीन भी बरामद की गई है। अररिया जिले के आरएस थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में मादक पदार्थ स्मैक के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। और पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां, आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने जमीन सर्वे की अवधि बढ़ाने को तरजीह देते हुए लिखा है, बिहार में जमीन सर्वे जुलाई 2026 तक होगा। दैनिक जागरण ने इसरो से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है, स्पैडेक्स मिशन के साथ भारत ने फिर भरी सफलता की उड़ान। दैनिक भास्कर ने लिखा है, डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर क्राइम से निपटने के लिए साइबर कमांडो विंग का किया जाएगा गठन। प्रभात खबर की सुर्खी है, आचार्य किशोर कुणाल कोन्हारा घाट पर पंच तत्वों में विलीन। राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है, नव नियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पटना पहुंचे। आज अखबार लिखता है, नए साल में शिक्षा विभाग में 6000 पदों पर होगी बहाली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राज्य में जमीन सर्वे का कार्य जुलाई 2026 तक होगा पूरा। शहरी क्षेत्रों में भी की जाएगी सर्वेक्षण की शुरुआत। बिहार विधान परिषद के विधानसभा कोटे की एक रिक्त सीट के लिए उपचुनाव 23 जनवरी को होगा। सीबीडीटी ने विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा 31 जनवरी 2025 तक बढ़ाई। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर भागों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी का पूर्वानुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।